प्रजा सोई दीता जग में नाम भजा सोई दीता रे नाम प्रजा सोई जीता जग में नाम प्रजा सोई जीता रे
कबीर साहब का ये शब्द है जो आपके सामने आ रहा फरमाते हैं कि जो नाम को भजने वाले हैं वही जगत में जीते पोषे जो नाम के साथ नहीं लगे वो जीते पोषे नहीं है इसका यही मतलब हुआ ना हम आम दुनिया में ये देख रहे हैं हम सब के सब यही कहते हैं कि हम जीते हम चलते हैं फिरते हैं खाते हैं और कई बातें करते हैं तो हम सब जी रहे हैं ये कबीर साहब ने क्या कह दिया हमारा जीना हमारी नजर से ठीक है मगर संतों की नजर से जीना किसी और हालत को कहा गया गुरबानी कहती है सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे को कहते वही पुरुष दुनिया में जीता है जिसके अंतर मालक बस गया प्रगट हो गया उसके सवा और कोई भी जीता नहीं सब मरना अब देखने वाली बात है कि हम हैं आत्मा आत्मा है चेतन स्वरूप परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है उस जात की ये एक कतरा इस हैसियत में ये भी चेतन स्वरूप है मगर हमारी चेतन स्वरूप हालत मन जो जड़ है जिस्म और जिस्मानियत के ताल्लुकात जितने हैं इनके साथ लगकर ये अपनी जीवंत हालत को भूलकर इसके अंदर जड़ता आ रही मुर्दा बनी आ रही अपने आप को ये भूल रही इसको ये होश नहीं कि मैं कौन हूं या क्या नहीं तो गुरु साहबों के कहे के मुताबिक यही ठीक है जीता वही पुरुष है जिसकी आत्मा प्रभु से जुड़ गई बाकी उसके सवार जितने हैं सब के सब मुर्दा हैं समझे तो आप देखेंगे कई एक किस्म की बीमारी होती है वो ये कि रात को कई भाई सो जाते हैं सोकर किसी को उठाकर दूध पिला दो दूध तो पी लेता मगर सुबह जब वो देखता है तो वो कहता भाई दूध मैंने तो पिया नहीं हालांकि उसे नहीं पिया पी तो दिया दूध मगर उसको पता नहीं बताओ ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पुरुष जिनको ये लगन ये बीमारी होती है वो रात को उठते हैं चारपाई सिर पर उठाकर बाहर मैदान में जा सोते हैं सुबह जब उठते हैं तो कहते हमें यहां कौन लाया हमें तारीख ये बतलाती है कि ऐसे पुरुष भी हुए हैं जो रात को उठे मजमून लिख दिया थीसिस लिख दिया किसी मजमून पर लिखकर रख दिया सुबह उठे कहते ये तो मैंने नहीं लिखा बताओ ऐसे पुरुष लिखने पढ़ने का भी काम कर रहे हैं बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं दूध भी पी लेते हैं मगर वो कहते हमने नहीं किया बताओ वो जीते हैं या मर गए तो आप देखिए कॉमन सेंस के लिहाज से भी महात्माओं के कथनों के लिहाज से भी हम एक ऐसी हालत से मैं जा रहे हैं जो काम करते खाते पीते चलते फिरते नजर तो जरूर आते हैं मगर हमें अपने आप ही की सूझ नहीं, हम सो रहे हैं, हमें एक किस्म की मुर्दा हो रहा है। हमारी आत्मा चेतन होकर जड़ सामानों के साथ लगकर जड़ तक उपा रही है, उसका असर ले रही है, संग दोष होता है। अब अगर इसको जीवंत करना हो, जीता करना हो, अब तो मुर्दा हो गया ना सब, अगर जीता करना हो तो इसका इलाज क्या है? जो इस पर असरात बाय से आ रहे हैं जड़ता के, मुर्दवनी के कहो, पंचमुर्गी के कहो, उसको उनसे बचाओ कि वो असरात इन पर ना आए। इस पर जो दबी हालत इसकी बन गई है बाहर सामानों जड़ता के असरात ले लेकर, उसको फिर कोई लाइफ वाला पुरुष उसको थोड़ी लाइफ इन्फ्यूज करे, रूप फोंके, वो वहार में आए और जी उठे, तभी हो सकता। दसम गुरु साहब थे, पांच प्यारे उन्होंने तैयार किए जो हर एक कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लाइफ वाली हस्ती पूर्ण पुरुष थे, बिठाया, तवज्जो दी, अमृत तैयार किया, जिन जिनों ने पान किया वो जी उठे, बेखौफ हो गए। फिर जब वो बेखौफ हो गए उनसे फिर आप कहा कि जो जी उठे वो सब बराबर है, खुद उनसे अमृत पान किया। सो जीने के लिए, जीवंत करने के लिए हमको मौजूदा हालत में जो बिल्कुल जड़ता में जा रहे हैं, अपने आप से बेसुध और बेखबर है, इस बाहर के असरार से बचना होगा पहली बार। फिर किसी जिंदगी वाले जीते पुरुष की सोबत में बैठकर उसका आभार लेकर हम भी जी उठ सकते। देखिए, एक बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जब यूज होता है तो फैलाव में जाते डिस्चार्ज ही होती है ना। हमारी आत्मा की चेतनता जो है वो भी फैलाव में जाने से बड़ी कमजोर महसूस होती है, हालांकि आत्मा उस प्रभु की अंश है, समझे, ये शेर है मगर गिद्ध बनी बैठी, कारण बाहर के असरात लेने का। अगर ये अपने आप में सुरजीत हो जाए तो बड़ी भारी ताकत है। बादल खुदा बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुख्तसर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है, थोड़े नफ्सों। कुरान शरीफ में आता है कि जब खुदा ने इंसान का पुतला बनाया है तो उसमें रूह फूंके, फिर सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। ये सजदा गए दो आलम है, फरिश्तों की भी सजदा गाह करने की जगह है, मनुष्य इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, हमने इसको कितना अधोगति में पहुंचाया। आत्मा परमात्मा की अंश जो जन्म मन में नहीं, बाय जड़ता के असरात लेकर मौत के नाम से भयभीत हो रही। अब ये जाग कैसे, बिजली को जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको बैटरी राव से जोड़ो वो चार्ज हो जाती, फिर वो भी चार्ज काम करती है। तो हम मुर्दा हो चुके हैं, सब मुर्दा, जीता पुरुष कोई कोई है, हजारों में लाखों में कोई एक, जिसके साथ लगने से उसकी तवज्जो देने से ये भी उभार में आकर जी सकता, नहीं तो सब मुर्दा, मुर्दे मुर्दे को मिल रहा होगा। जागे कौन, जीवंत कौन? गुरबानी में इसीलिए कहा, जिया दान दे भक्ति लैन हर्षो लैन मिलाए, जिंदगी का दान देकर भक्ति में मालिक के साथ जोड़ देते। जिया दान दे भक्ति लैन और मालिक से एक होने का सामान बन जाता, جب تک جی دان نہ ملے, لائف امپلس نہ ملے, ابھار نہ ملے, کہو یہ بیٹری ڈسچارج ہوئی پھیلاؤ میں جا کر چارجنگ اس کی نہ ہو, کام کیسے کر سکتے. تو سنتوں کی اصطلاح میں جتنے چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, لکھتے پڑھتے, لیکچر دیتے, کتھا گیان کرتے کراتے جتنے لوگ نظر آتے ہیں, سب ہی مردہ. جیتا پرش کیول اسی کو مانا ہے جس کی آتما اس پربھو پریپورن سے لگ گئے. یہ آتما تھی, باہر سے ہٹی, پھیلاؤ ڈسچارج ہونا بند ہو گیا اس کا, نام پاور سے لگ کر یہ چارج ہو گئے. ایسا پرش ہی جیتا ہے, باقی سب مت. تو کبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہی نام پجا سو جیتا جگ میں, جس نے نام کے ساتھ جو لگے, جس کی آتما لگی, وہ جی اٹھا, باقی سب ہوتا. کہتے یہ بڑی مسلمان عمر ہے, جو نام کے ساتھ نہیں لگے وہ جی نہیں سکتے. نام کے ساتھ کیسے لگ سکتے ہیں؟ نام دو قسم کا ہے. نام نام تو سارا جہان کہنے والا ہے, مگر نام کے سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں. نام نام سب کہتا ہے, نام نہ پایا کوئے, نام نہ پایا کوئے, نام کی گتی ہے نیاری. نام نام تو سارا جہان کہنے والا ہے, مگر نام کی گتی کے جاننے والا کوئی کوئی. سو نام کے ساتھ لگنے والا جی سکتا. اب دنیا نام جپ رہی ہے, جس کو بھی پوچھو وہ کہتا ہاں میں نام جپ رہا ہوں. کون سا نام؟ اکشری نام. وہ اکشر جو رشی منی مہاتماؤں نے برتے اس مالک پریپورن کے بودھ کرانے کے لیے, سمجھانے بجھانے کے لیے, وہ اکشر. بلہار جاؤ جیتے تیرے نام, کہے مالک جتنے تیرے نام آج ان تک رشی منیوں مہاتماؤں نے تیرے بودھ کرانے کے لیے برتے ہیں, ہم سب پر قربان. تو یہ تو ہے اکشری نام. اکشری ناموں کے ساتھ لگنے سے چارجنگ نہیں ہوتی, فائدہ تو ضرور ہے. ہم نے دنیا کے سمن کو, جس کے کرنے سے دنیا ہم میں بس گئی, ہم دنیا کا روح بن گئے, اس کو ہم نے اس پربھو کے سمن سے کاٹنا, یہ پہلا کام. مگر چارجنگ کچھ اور چیز, ایک سوئی ہو جاتی ہے تھوڑی, اس میں آنند بھی آ جائے گا, مگر آتما کا چارجنگ تبھی ہوگا جب آتما ہے چیتن. اس کو کچھ ہائر کانشیس راؤ جو ہے, چیتن راؤ جو ہے پرماتما پریپورن کی, وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے, پھر یہ چارجنگ ہوگا. تو وہ پاور جس کو یہ اکشی نام سمجھانے بجھانے کے لیے بتتے جا رہے ہیں, اگر اس پاور کے ساتھ ہماری آتما جو اس وقت جسم کا روح بنی بیٹھی ہے ادھر سے ہٹ کر اس کے ساتھ لگے, تو یہ جاگ اٹھے, جی اٹھے, نہیں تو یہ مردہ کی مردہ. تو وہ نام جس کو یہ اکشی نام بوٹ کرا رہے ہیں, وہ ایک پاور ہے. نام کے دھارے کھنڈ برہمنڈ, نام وہ طاقت ہے جس سے کھنڈ اور برہمنڈ دھارے گئے. نام ہی تے سب جگ ہوا, بن سدگر نام نہ جاپا. نام سے سارا جگت انٹو بینگ, ہستی میں آیا. اس کا کانٹیکٹ کیسے مل سکتا ہے کہ جب تک کوئی ست سروپ آتم تتو درشی مہاتما نہ ملے, ہماری آتما کو پہلے آتما نہ بنائے جو اسوں کے من اندروں کے گھاٹ پر جسم کا روح بنی بیٹھی ہے, تب تک اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ تو اس کے ساتھ لگنے سے آتما چارج ہو کر جیونت ہو جاتی ہے. جو اب مردہ بنی کے اثرات لیے ہوئے ہیں, یہ جاگ اٹھتی. اس کے ساتھ لگنے سے तिथे कड़िए सुत मत मन बुद्ध, वहां पर हमारी मति मन और बुद्धि ये एथीरियलाइज हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की क्लियर कट व्यू सामने आ जाता, कब जब सुत नाम के साथ लगती। सो नाम के साथ लगने से जीव जीवंत हो सकता, नहीं तो ये मुर्दा हालत में जा रहा। वो नाम ताकत जिसे हमने कांटेक्ट होकर चार्ज होकर जिंदगी को पाना है, वो कहां पर है? वो जरे जरे में समा रहा है, वो आपके इस जिस्म में भी उसका डिवाइन लिंक मौजूद है। नाव निधि अमृत प्रभु का नाम दही में उसका विश्राम। नौ निधियों के क्या हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है उसका बासा इस देह के अंदर। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा। बाहरी दृष्टि से जब ऊपर आओगे तब, इंद्रों के घाट से ऊपर चढ़ोगे ट्रांसेंड करोगे तब वो उसका नाम का कांटेक्ट मिला जो अति प्यारा और बड़ा मीठा। उसके साथ लगने से हम जीवंत हो सकते हैं। जैसे जिस्म को जीवंत करने वाली ताकत हमारी आत्मा है, भाई आत्मा को जीवंत रहो जबरदस्त रिचार्जिंग डबल चार्जिंग करने के लिए नाम पावर। कबीर साहब कह रहे हैं जिनकी आत्मा नाम के साथ लग गई चार्ज हो गई वो ही सच्चे मानों में जीता जगत में जी रहा और उसके सवाल सब मुर्दा। यहां आलमो और बेलमो का सवाल नहीं, आलम हो या बेलम हो जिसकी आत्मा मंदिरों से आजाद होकर नाम के साथ जुड़ गई कांटेक्ट कर गई किसी ऐसी हस्ती जो नाम मुजस्म है, वर्ल्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, शब्द मुजस्म हो गया और हमारे दरमियान रहा, जब वो तवज्जो दे के इन्फ्यूज उभार रहे तब पिन गुरु छोड़ती, यानी तो छोड़ती कहां? जब छोड़े फिर हायर कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ना नसीब हो जाता, उससे पहले नहीं। तो ये कोई जन हर्ष्यो देवे जो, फिर वही बात जिया दान दे भक्ति लायन, लाइफ इम्पल्स जो लाइफ जिंदगी मुजस्म है वही हमको जिंदगी दे सकता, दूसरा नहीं। ये न काम आलमों का है, न अमीरों का है, न हाकमों का है, न गरीबों का है, न और किसी का है। किसी ऐसे पुरुष जो जीवंत पुरुष है सच्चे मानों में इस इस्तलाह के मुताबिक जो संतों ने दी है वही दुनिया में जीता है, जीते के साथ लगकर सब कोई जीता हो जाएगा। जीते के साथ लगते हुए देखिए चार्जिंग हो, अगर थोड़ी सी अर्थिंग साथ हो जाए बिजली डिस्चार्ज हो जाती है। ये अर्थिंग क्या है? अगर आत्मा में थोड़ी सी जिस्म जिस्मानियत में आई अपने और उस चार्ज करने वाले के दरमियान में रुकावट बन गई उसमें मुर्दापनी आ जाएगी। तो कबीर साहब बड़े प्यार से कह रहे हैं
नाम पजा सोई जीता जग में, नाम पजा सोई जीता रे, हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़ भागवत गीता रे।
कहते हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम के साथ अभी लगे नहीं, उस नाम पावर के बोध कराने के लिए जो अक्षर बढ़ते गए उनका तो जबान से या माला से सिमरन कर रहे हैं और अंतर में कैंची रखी हुई है लोगों के गले काटने के, मुंह से राम राम और बगल में छुरी, ऐसी हालत में बताओ वो जीवंत पुरुष कैसे हो सकते। ऊपर से तो राम 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 जपना एक पराया माल अपन, जो दिखावे की बात कर रहे हैं, अंतर से दुनिया की हवस है, दुनिया के लब लालच फंसा पड़ा है, खाइनों के भोग है, खा रुपए लब लालच जायदादों के हवस है, ये सब चीजें जिसमें बस रही है हृदय में, बताओ ऊपर राम राम क्या करेगा, या अल्लाह या वाहिगुरु कहना क्या करेगा। तो सिमन ने आगे चलकर जिस पावर से कांटेक्ट करना है वो है नाम। हर सिमन में अनहर चुनकार, सिमन करने से घट में अनंत की जुनखार उठती है, वो अनंत की जुनखार जो है ना वही नाम की नहीं है, उसके साथ लगने से चार्जिंग और जीवंत जिंदगी मिल सकती है। मगर ये अक्षरों में ही अभी बैठा, अक्षरों को भी यक्षुई दिल से अगर सिमन करे तो भी काम बन जाए, मगर नहीं, खाली तोते की तरह रट रहा, ज़ारा दिखावा बना रहा है लोगों को लूटने के लिए, बेख बना लिया, जाहिरदारी बना नहीं, अंतर में हमेशा पैसा है। हमारे हुज़ूर फरमाया करते थे, किसी ने खोती वाई किसी ने पोथी वाई, बड़े थोड़े से लफ्ज में बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि कोई तो मजदूरी करके रुपया कमा कर पेट पाल रहा, कोई नौकरी चाकरी करके, कोई दुकानदारी कर, कोई दुकानदारी करके, और कोई किताबें पढ़ पढ़कर मजदूरी कर रहा, लोगों को सुना सुना कर, लेक्चर देकर, कथा करके, बाज कर, भाषण दे देकर। तो ये जो सिलसिला है ये जिंदगी की तरफ ले जाने वाला नहीं, गर्ज उनकी है दुनिया का हासिल करना। जिस तरफ नजर मार कर देखोगे, कबीर साहब वाली बात सोलह ने सही उतरती है, सभी पुलानों पेट के धंधा, सारे ही पेट के धंधे में भूल रहे। हम जो पाठ करते हैं आम, या पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो साधन कर रहे हैं, उनसे जरा प्यार से पूछो, अरे भाई ये तुम पाठ क्यों करते हो, पूजा क्यों करते हो, यार जी हमारे बच्चे राजी रहे, हमारी रोजी खुली रहे, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो वो भी जो हम सिमन भी कर रहे हैं ना, वो भी दुनिया की खातिर कर रहे हैं, खासकर मुश्किलों के हल करने के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं कर रहे। मजनू था, उसको एक बार लोगों ने ये कहा कि आए मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता है। तो कहने लगे, अगर खुदा मिलना चाहता है तो उसको कहो लैला की शक्ल बन कर आए। अब बताओ, खुदा को भी वो तब मिलना चाहता है जिस लैला मिले, नहीं तो खुदा भी नहीं चाहिए। अरे भाई हमारे पूजा पाठ नमाजें जो कुछ भी है वो इसीलिए कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कहीं कहीं कोई सच्चा हृदय होगा इसीलिए कर रहे हैं कि हमको दुनिया मिले बस। तो ऐसे पुरुषों को बताओ खुदा मिलेगा, परमात्मा कभी मिलेगा, कभी नहीं। तो जीवंत होने का सवाल है। कहते ये लोग भागवत और गीता का जिक्र किया है क्योंकि पंडित जी से बात हो रही थी। अरे भाई सब ग्रंथ पोथियां जितनी भी हैं, खाए किसी समाज की है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, सिख भाइयों की है, कोई भी किताबें जबान से पढ़ते चले जाओ। जबान से तो सिमरन है, सिमरनी कर रहे हैं, हाथ में सिमरनी है, दिल में लोगों का, दिल में लोगों का बुरा भला बस रहा है, फिर बताओ वहां अंतर में रंग कैसे आएगा। सवाल तो तोते की तरह खनिये पढ़ते चले गए, लोगों को सुनाते रहे या सुनते रहे, अंतर की नीयत नहीं बनती, रास नहीं हुई, तो हालत अंतर की बदल कैसे, चार्जिंग कैसे हो। पहला कदम सिमन का भी जारी है, मत दिल में दुनिया की हवस है, लोगों का खून नुचरा जा रहा। अगर हमने परमात्मा का नाम लेना है तो उसके लिए महात्मा क्या कहते हैं, जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, अगर कपड़े को खून लग जाए तो कहते कपड़ा पलीत हो गया, समझे। कहते जो लोगों के खून निचोड़ कर पी रहे हैं, जो लोगों का खून निचोड़ कर पी रहे हैं, बेवाओं का हक, यतीमों का हक मार रहे हैं, जबरदस्ती या दर पर्दा, ऐसे पुरुषों का चित्त कैसे निर्मल हो सकता। तो फरमाते हैं क्या करना चाहिए, नानक नाव खुदाय का दिल हच्छे मुख ले। क्या है नानक, उस परमात्मा का अगर तूने नाम लेना है तो दिल को साफ करके ले, तब जबान से निकाल। अगर हृदय पवित्र है, जबान से गीता भागवत ग्रंथ पोथिये ये वो उच्चारण कर रहा है, बड़े स्वर से भी कर रहा है, तो हुआ क्या। दसम गुरु साहब के वक्त का एक वाक्य है कि उन्होंने कहा कि जपजी साहब का जो शुद्ध पाठ करके सुनाए हैं वो जो मांगेगा देंगे। एक आदमी ने बड़े प्यार से पाठ करना शुरू किया, करते करते आग के करीब आया तो दिल में ख्याल है ये जो घोड़ा दसम गुरु साहब के पास है ये मुझे मिल जाए। अब पाठ का सुनाना उस घोड़े के पाने के लिए, यही हालत हम आ रही है। जरा गौर से विचार कर देखो हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। जबान तो कहता है दिल दुनिया मांग रहा है। तो फरमा रहे हैं नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो, अमर दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो। जिन्हें दुनिया के लोग हैं कि वो झूठे अमल में लगे पड़े हैं, गलाजत भरी पड़ी है, ढेर लगी है, ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया, थोड़ा लेवेंडर भी छींच दिया ऊपर, क्या वहां से खुशबू आएगी, कभी नहीं। बर्फ हो ऊपर काला कंबल डाल दो, जो देखने को भी अच्छा नहीं मालूम होता, उसे क्या होगा, ठंडक आएगी। सो जिस इंसान के अंतर गलाजत भरी पड़ी है, ऊपर से कितना भी गाता बजाता नाचता कूदता है, माफ करना, आप पछाड़े तत्ती नाल रोटियां कारण पूरे तार, बताओ ऐसे लोगों का प्रचार या अपने आप को जतलाना कि मैं बहुत बड़ा हूं, क्या मिलेगा, क्या ले सकते ना। उसको कुछ मिला जो उसके साथ लगेंगे वो भी वैसे चले जाएंगे। तो दुनिया के लोग कहते झूठे अमल में लग रहे हैं, यही और सब महात्माओं ने कहा, जा का दिल साबित नहीं ता को कहा खुदा। जिसका दिल ही साबित नहीं, हिरसो हवा में टुकड़े हुए पड़ा, भोगो रसों में लंपट है, जायदारी बनाई हुई है, मर दिल में दिल ये वो है, ऐसी हालत में जा रहे हैं, ऐसे पुरुषों को कैसे आनंद आ सकता। अगर थोड़ा बहुत आनंद आ भी गया वो जाया हो जाता है, फिर रोने लगता। तो इसके जो अंतर की मैल है ना, इसके धोने का सामान होना चाहिए। जीवन की पड़ताल रखो। मैंने जो डायरी सिस्टम रखा है उसका खास मतलब है, बेजा नहीं, सोच समझ कर रखा गया। जब तक जीवन की पड़ताल नहीं होगी, जो हम में त्रुटियां शॉर्ट कमिंग्स अवगुण है वो जब तक निकलेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। हम दूसरों के अवगुणों की तरफ तो देखते रहते हैं, अनपेड अप्रेंटिसेज ऑफ द सीआईडी ऑफ गॉड, परमात्मा के बगैर ढेले पैसे के जो नौकर है सीआईडी का काम, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। अरे भाई वही नजर अपनी तरफ डाल कि तू कैसा, دوسروں کی غلاظت کا دھیان کرتے 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 تمہارے اندر غلاظت ہی آئے گی بڑھے گی. سوامی جی مہاراج نے فرمایا تو پرائے اوگن کیوں دیکھتا ہے بھائی, اپنے غلاظت کو اوگنوں کو کیوں بڑھا رہا؟ تو اس لیے کیا کر, سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں ایک ایک اوگن چن چن کر باہر پھینکتے چلے جاؤ اور گلوں کو دھارن کرتے چلے جاؤ, اس سے زمین کی تیاری ہوگی. جب تک زمین کی تیاری نہیں ہوئی اگلا کام نہیں بنے گا. ہم چاہتے ہیں وہ پربھو ہمارے ہردے میں پرگٹ ہو. مرتلسی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پرگٹ ہونے کے لیے ہمیں جو قدم اٹھانا ہوگا وہ یہ ہے, دل کا حجرا صاف کر جانا کے آنے کے لیے, دھیان غیروں کا اٹھا اس کے بٹھانے کے لیے. اپنے دل کے حجروں کو صاف کرو. کہتے وہ کیسے صاف ہوگا, اس پریتم کے بغیر اور جتنے دھیان ہیں غیروں کے سب نفی کر. اس دل میں سوائے اس پریتم کے اور کسی کی یاد, کسی کی لگن, کسی کی کشش نہ ہو, ایسے ہردے میں وہ پریتم پرگٹ ہوگا. جب تک یہ نہ ہو کام نہیں بنتا. گرو امرداس جی صاحب نے فرمایا من میلے سب کچھ میلا, تن دھوتے من اچھا نہ ہو. جس کا من میلا ہے, من میں ویگ چل رہے ہیں ایک یا دوسرے, کبھی کام کے سر سے پاؤں تک زیاد چڑھ گئے, کبھی کرودھ ایشا دویش نندا اور چغلی کے سر سے پاؤں تک جلن کی آگ میں راؤ چل گئے, موہ آیا تو موہ کی راؤ چل گئے. تو کہتے ہیں اس ان میلوں کو دور کرنے کے لیے تن کے دھونے سے یہ نہیں جائیں. ہم کیا کر, باہر کی صفائیاں کر رہے ہیں, اندروں کسداں کالیاں باروں چٹوئیاں. ہم باہر بڑے چکنے چوپڑے بڑے سندر معلوم ہوتے ہیں, بڑے بڑے معاف کرنا ٹائلٹ کے سامان بھی برتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئے, مگر انتر کی حالت بہت ناگفتگو ہو رہی ہے, کالک سے بھرے پڑے. ایک تو جنموں جنموں کے مل اس من کو مل لاگی, کالا ہویا سیاہ, اور دنوں دن اور غلاظت بھری جا رہی ہے. اسی حالت کو دیکھ کر سوامی جی مہاراج نے فرمایا چنر میری میلی بہی میں کاپے جاؤں دلہان, جسم روپی چنریا میری میلی ہو رہی ہے, ارے بھائی میں کس کے پاس جاؤں اس کے دلہانے کے لیے؟ اپنے آپ تو ہم دھو نہیں سکتے کیونکہ انہوں کے گھاٹ پر بیٹھے, کوئی اور پوچھ جو انہوں کے گھاٹ سے اوپر جاتا ہے ہمیں توجہ دے کے اس سے اوپر لائے. پہلی بات جہاں سے غلاظتیں آتی ہیں ہر انتر نام کو کانٹیکٹ دے دے, اس کے ساتھ لگنے کی سب غلاظتیں جل کر سوا ہو جائیں گی. کہتے کس کے پاس جاؤں, کہتے بڑے بڑے گھاٹوں پر گئی, گھاٹوں سے مراد بڑے بڑے مہاتماؤں کے دروں پر مٹھوں پر گئی جہاں بڑا بڑا پرچار ہو رہا تھا, مگر کوئی دھویا ملا نہ سجان. وہ سجان دھوبی ایسا سمرک نہ ملا جو ان آلائشوں کو دھو دیتا. ایک آدمی چلا ایک قدم دس قدم چل پڑا, چلنے والا جو خود رستے میں ہے دوسرے کو کہاں لے جائے گا آپ بتائیں. اس لیے کسی سمرک پرش سے صحیح زندگی کی راہ مل سکے گی, ادھورے سے ادھورا حالت پیدا ہو کیا اور کیا ہو. تو کبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ زبان سمرنی ہے, انتر میں کینچی سے کتر رہا, ظاہرہ تو بھاگوت گیتا قرآن انجیل گرو گرنتھ صاحب کی بانی اور کسی مہاتما کی بانی بڑا دھن اور سور اور لئے سے لاپ رہا ہے, دل میں کہتا پیسہ کیسے آئے پھر بتاؤ. ایسے دل سے یہ جو آواز نکلے گی دوسروں پر کیا اثر پیدا کرے گی؟ آؤٹ آف دی ابنڈنس آف ہارٹ اے مین سپیکس, جو دل میں بس رہی حالت ہے, جو انسان بولتا ہے اس سے وہ خیالات الفاظ جو وہ کہتا ہے اس سے چارج ہو کر رنگے ہوئے آتے ہیں, دوسروں کو وہی رنگ دیں گے. آگ جل رہی ہے, آگ کے ساتھ ہوا لگ کر आ रही है, बताओ वो गर्म होगी कि नहीं? हवा तो वही, मगर आग से लगकर आई है। वही हवा अगर बर्फ के ढेर से लगकर आएगी तो ठंडक देगी। जो कहने वाले के दिल में हालत बनी हुई है, जो वचन वो उच्चारण करता है वही असर लेकर आता है। इसलिए किसी आन भाई पुरुष के कलाम को सुनना, उसकी शोभ संगत में बैठकर हृदय में जो असर पैदा होता है वो सिर्फ आलमों के कहने से नहीं, वो तो दुनिया का रंग लेकर ही आएंगे। तो कहते हैं जाहिरदारी तो हमारी ये बनी पड़ी है और दिल में ये हालत है, बताओ नाम का कांटेक्ट कैसा है कि जिंदगी को कैसे पा सकता है? सवाल तो यह, जिंदगी के पाने के लिए पहले सोच को पिंड से ऊपर आना होगा। जब तक बाहर की ख्वाहिशात से ये लदा पड़ा, खींचा पड़ा, लंपट हो रहा, पिंड को छोड़ कैसे सकेगी? उसकी रूह छोड़ नहीं सकेगी। अगर छोड़ेगी कुछ दिन फिर जाती रहे, फिर रोना पड़े। तो कबीर साहब बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं, अरे भाई जाहिरदारी तो हमारी ये है। एक शायर कहता है क्या, ऊपर से तो नमाज हम पढ़ते हैं मगर दिल में बुतों की याद। कहते मुझे हैरानी आती है कि हम कैसी नमाजें, कैसी पूजाएं, कैसे पाठ, कैसे ये वो के सामान कर रहे हैं। जो दिल मांगेगा उसी से वही चीज तुमको मिल सकती है। हमारी जबान मांगती है कुछ और, दिमाग मांगता है कुछ और, दिल दुनिया में रंगा चला जाता है गलती से या जानबूझ कर, बेख्तियार आपको खींचेगा उसी तरफ जो दिल चाहता। यही कारण है भगवान किशन जी ने फरमाया कि हजारों लोगों में से एक मेरी तरफ चलता और ऐसे हजारों चले हुए में से एक मुझे पहुंचता, फिर कहीं न कहीं मारे गए। किसी मजबूत किले में रहो। गोपी चंद को उसकी माता ने जो उपदेश दिया था, जब उसने योग धारण किया है तो गुरु ने हुक्म दिया कि जाओ भाई अपने महलों से मांग लाओ पहले, ताकि तुम्हारी लोकल आज ना रहे गए। पहले अपने जो स्त्री है उनके यहां गए, उन्होंने सब जेवरात उतार कर उसको दे दिए कि अब ये जेवरात किस काम के हैं पति के बगैर। फिर माता के यहां गए, माता ने कहा देख बेटा मैं तुझे वो चीज देना चाहती हूं जो तेरे काम आने वाली, मेरे कहे पर तुमने योग लिया, मैं अब तुमको वो तीन चीजें देना चाहती हूं जिसको अगर तुम बरतोगे तो सुखी हो जाओ। पहली बात, देख बेटा तूने मजबूत किले में रहना होगा, मजबूत किले में। आज मजबूत किला कौन सा? क्या महाराज, माता वहां तो जमीनें होंगी, रड़े मैदान होंगे, किले कहां से आएंगे? क्या लगे मेरी मुराद मजबूत किले से किसी समर्थ पुरुष गुरु के दायरे में रहना, कांटेक्ट में रहना, वही मजबूत किला। वहां तुमको बचने की सूरत होगी, नहीं तो लूटे जाओगे, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह, कभी अहंकार में, कहीं न कहीं मारे चले जाओगे। बहुत अच्छा। फिर और एक दो बातें कही, इस वक्त हमारी उनसे गर्ज नहीं। तुम मजबूत किले में रहने वाले ही नालायशों से बच सके तो बच सके। मजबूत किले में रहने की मुराद उस समृद्ध पुरुष की तरफ मुंह हमारा रहे, इंद्रियों के भोगों रसों की तरफ तवज्जो न जाए। ये तो खींचेंगे, इनका खासा है जमीन खींचना। अगर समृद्ध पुरुष की नजर रहेगी, भजन से उनसे लुत्फ बना रहेगा तो इंसान गिरावट से बच जाएगा, नहीं तो गिरेगा। तो फरमा रहे हैं कि जाहिरदारी हमारी कुछ और है, लोग पतीने कछु न होवे न ही राम आना। लोगों के खुश हो जाने से अरे भाई क्या बनेगा? परमात्मा कोई अनजान बच्चा नहीं जिसको तुम धोखा दे लोगे। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन परमार्थ के पाने के लिए पहला जीना। जब तक ये नहीं होगा अगला कदम नहीं उठाया जा सकेगा। अब देखिए अपनी अपनी तरफ नजर मार कर देखो हम क्या कर रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं, हम बहुत कुछ जानते हैं। कौन इंसान है ये नहीं जानता कि सच बोलना अच्छा, कौन इंसान ये नहीं जानता कि दुख सुख को दुख देना अच्छी बात नहीं। हाय वो मन से हो, वचनों से हो या कर्म से हो, कौन इंसान है ये नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पाक जीवन सबसे उत्तम चीज है। कौन इंसान ये नहीं जानता कि सबके अंतर परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, किसी से नफरत, सबसे प्यार करो। जानता तो है ना, बुद्धि के लिहाज से, सुनी सुनाई लिहाज से। अब जरूरत है, कौन नहीं जानता कि निष्काम सेवा करना सबसे अच्छी है, इसे मन साफ होता है। मगर जरूरत इस बात की अब है, जानते तो हम सब कुछ हैं। आठ दीप कुएं परे, हाथ में तो दीवा लेकर फिर कुएं में गिरे तो उसकी बदकिस्मती रहे। इन हालात में बचने के लिए किसी मजबूत किले में अख्तियार करो सोबर संग रहना सीखो, उसे आप गिरोगे भी फिर उठने का सामान होगा, अगर नहीं होगा तो हर वक्त गिरते रहोगे। स्वर्ग करने का मतलब यह है कि जब तक जीवन नेक पाक सदाचारी न हो, अगला कदम उठाया नहीं जा सकता। सब समाजों का यही पहला आदर्श है, इंसान इंसान बने। अरे भाई सच पूछते हो, परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल है तो इंसान का बनना मुश्किल है। इंसान बन जाए, परमात्मा खुद उसकी तलाश में। आप देखिए हमारे हजूर थे, उनके गुरु बाबा जयमल सिंह जी महाराज ब्यास से चले मरी की तरफ, रावलपिंडी गए, मरी आए, वहां जहां ये उन दिनों नौकरी में थे, काम करा रहे थे, पास से गुजरे। उनके साथ एक और आदमी था, उसको कहने लगे कि हम इसके लिए आए हैं। वो कहने लगे महाराज इन्होंने तो आपको फतेह भी बुलाई नहीं, फतेह भी नहीं बुलाई। क्या लगे नहीं, आज चौथे दिन के बाद ये मेरे पास आएगा। देखिए चले ब्यास से, क्या पंजाब में आदमी कोई नहीं रहा था, आदमी तो बहुत थे, मगर आदमी उस सेंस में नहीं थे जिसमें कि वो महात्मा समिति आदमी कोई। गुरु कम एज मेड, यहां नहीं बनते, पिछले संस्कारों से वार होता, चलो लाइफ से लग जाती है परफेक्शन में जाने के लिए। वो बच्चों का खेल नहीं महाराज, महात्मा का पूर्ण होना बच्चों का खेल नहीं, न हाथ लगाने से बनेगा, न सांग बनने और एक्टिंग और पोजिंग से ये काम बनेगा। मन इंद्रियों का दमन करना, बाहरी ख्वाहिशात से हटना, अंतर्मुख उस नाम के रस को पाना, ये बच्चों का खेल नहीं, अक्षरों का क्या। हमारे दोस्त फरमाते थे कि एक चरखा काटने वाली लड़की भी नाम दे सकती, नाम तो अक्षर है ना, उनमें जो चार्जिंग है वो कहां से आएगी। लफ्ज तो वही है, चार्ज होकर आने चाहिए, उस चार्ज हुई हालत ही जो है वही तुम्हारी संभाल करेगी, अंतर नेगेटिव पावर के हमलों से रोकेगी, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि भाई बाहर और अंतर का सामान एक हो, प्रभु को पाना चाहो प्यार से याद करो। किस तरीके से याद करो इसकी भी खास कायद नहीं, माफ करना, खास तरीके से बैठने ही से आपकी कल्याण होगी या उठने से होगी। हजरत मूसा का जिक्र आता है, एक बार जंगल में गए, वहां एक गडरिया था, समझे, गडरिया बड़े प्यार में बैठा, कह रहा कि हे खुदा अगर तू बच्चा होता मैं तुझको दूध पिलाता, अगर तू बच्चा होता मैं तुझे इन भेड़ों की ऊन उतार कर कपड़े पहनाता। कहता चला जाता प्यार में, आदमी जो जिस दायरे ख्याल में है उसी से मिसालें लेकर समझाना, प्यार का इजहार ही है ना बारी जितने लफ्ज़ हम बरतते हैं। پھر کہنے لگا ہے خدا کہ تمہارے سر میں جوئیں پڑ جاتی تو میں تمہاری جوئیں بھی نکالتا. ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے, پیار میں بیٹھا مگن ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ پاس سے گزرے, سنی کہہ لے ارے کافر کیا بکتا. ہوش میں آیا, وہ تو پیار میں بیٹھا تھا نا, لفظوں کا اظہار نہیں. جو اس کے پیچھے جس حالت میں جس چارج ہو کر دل سے جو آواز نکل رہی تھی اس کا سوال تھا. ڈر گیا, کیوں مارا ہے؟ کہ تو کفر بک رہا. خدا سے ناراض ہوتا, رونے لگ گیا. وہ تو خوشی کے لیے کہہ رہا تھا, پربھو کے پیار میں کہہ رہا تھا, رونے لگ گیا, چیختا پکارتا بھاگ گیا جنگل میں. جہاں کا جب انسان لاچار ہو جاتا ہے نا تو خود خود آنکھ لگ گئی, خدا سامنے آ گیا. دیکھ بھائی میں تمہارا دودھ بھی پیوں گا, تمہارے میں کپڑے بھی پہنوں گا, سب کچھ جو تو کہے گا. میں بڑا خوش ہو گیا. اب حضرت موسیٰ جب بیٹھے مراقبے میں تو خدا نے کہا دیکھ حضرت موسیٰ, میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے, نہ کہ توڑنے کے لیے. وہ جڑا ہوا تھا, تو نے اس کو توڑ دیا. تو برائے وصل کرنا نام دی, نہ برائے فصل کرنا نام دی. تجھے میں نے بھیجا تھا لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے, وصل کے لیے, جوڑنے کے لیے, نہ کہ کاٹنے کے لیے. وہ کہنے لگا دیکھو بنجر جو زمین ہوتی ہے, بنجر زمین پر کوئی مالیہ نہیں لگتا, بنجر زمین پر کوئی مالیہ نہیں ہوتا. ایسے جو پیار پریم میں بیٹھ کر لفظوں کا چکان چانٹ کی طرف نہیں, وہ کس دلی و بہاس اور پیار سے کہہ رہے ہیں اس کی قیمت ہے, ان الفاظوں کی قیمت نہیں. وہ ٹوٹے ہیں یا پھوٹے, پیار بھرے ہوں کام دے جاتے ہیں. سو پرماتما ملتا ہے پریم سے, پرماتما خود پریم سروپ ہے, گاڈ از لو. آتما اس کی انش ہے, یہ بھی پریم کا سروپ ہے. اس نے کسی نہ کسی جگہ لگ کر رہنا خاصا. اب یہ جسم باہری تعلقات بال بچوں روپئے پیسے جائیدادوں سے لگی پڑی ہے, اس سے نتیجہ کیا؟ جڑتا کو حاصل کر رہی ہے, مردگی کو حاصل کر رہی ہے. اگر یہ ہٹ کر وہی پیار ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا لے کام بن جائے. جب بولے شاہ گئے شاہ نائک کے پاس تو کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا کہ مہاراج پرماتما کیسے ملتا ہے, تو کہنے لگے سائندہ کی پاونا ادھر پٹنا تو ادھر لاؤنا. سوامی جی مہاراج نے فرمایا کوئی جن ہرشو دیوے جوڑ, یہ گربانی میں آیا. سوامی جی مہاراج نے فرمایا جوڑو ری کوئی سرت نام سے. اس کا یہ کیا بولے, ہماری سرت کہیں اور لگی پڑی. تو جب ساج کہوں سن لو سبے جن پریم کی ہو تن ہی پر پاؤ. اے لوگوں میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ جنہوں نے پریم کیا انہوں نے ہی پربھو کو پایا ہے. جتنی ہم پوجا پاٹھ نماز یہ وہ کرتے ہیں نا, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں پربھو کے لیے پیار پیدا ہو. اگر پیار نہیں بیٹھا, دل ابرا نہیں, سوز نہیں جاگا, تڑپ پیدا نہیں ہوئی اس کی یاد میں, بتاؤ ایسی یاد کیا کریں؟ تو کبیر صاحب پنڈت کو بڑا کھول کر سمجھا رہے ہیں, ارے بھائی ظاہر داری تو سمن کر رہا, انتر میں تو کینچی لیے بیٹھا ہے, جہاں سے گانٹ کتری جائے کتر لو. منی میکنگ گوئنگ آن, پیسہ آئے ہائے پیسہ, ہائے پیسہ ہو رہی ہے. نیک طریقے سے آئے یا بس یہ پرواہ نہیں, آپ پاک کھا پاک سب کھا. تو ایسی حالت میں بتاؤ چین کیسے؟ خواہ وہ بھاگوت پڑھتا ہے یا گیتا پڑھتا ہے یا بائبل پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے. ارے بھائی کوئی دھرم پشک کو بھی ہزار بار پڑھ لے, جبکہ وہ جو دھرم پشک کہتی ہیں وہ یہ نہیں کرتا, تو شانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ پربھو کیسے مل سکتا؟ ہم جیتے پشک کیسے ہو سکتے ہیں؟
ہاتھ سمرنی پیٹ کترنی پڑھے بھاگوت گیتا رے, ہردا سدھ کیا نہیں بارے, कहत सुनत दिन बीतारे।
कहते हैं हृदय को तो साफ नहीं किया, सुबह से शाम तक लोगों को कथा ज्ञान सुनाता रहा या सुनता रहा, समझ बस हृदय शुद्ध नहीं किया। बताओ क्या बने? जब कभी दो बैठते हैं ना, आपको पता क्या करते हैं? फलाना महात्मा ये कहता, फलाना ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। अरे भाई तुम ऐसे हो कि नहीं, बात तो तुम बताओ ना। तो यही मैं अर्ज कर रहा था कि जितना कुछ हमको मालूम है ना, अगर उसी को अमल में लाया जाए तो काम बन जाए। ज्यादा ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, एक सत्संग काफी, अगर वो अमल में आ जाए तो। नहीं तो बातों के पकवान से क्या होगा। एक कड़छी है, वो बड़े लजीज खानों में फिर रही, क्या उसको कोई लज्जत आती है? बड़े ज्ञान ध्यान की बातें सुना दो, अरे भाई तुम कोरे के कोरे हो। और फिर दूसरों पर क्यों असर नहीं होता? क्यों हम खुद आमिल नहीं। स्वामी रामतीर्थ साहब ने फरमाया, वांटेड रिफॉर्मर्स। हमें प्रचारकों की बड़ी भारी जरूरत है भाई। कैसे प्रचारक? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स, दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप, जो अपने आप को उपदेश दे, दूसरों को नहीं। तो अपने आप की तरफ देखने की जरूरत है भाई। जैसे काई एक तालाब हो, उस पर सब काई जम जाती है ना, मालूम होता पानी कोई नहीं। जब थोड़ा लकड़ी से हिलाओ तो पानी कुछ नजर आने लगता, फिर छोड़ दो, फिर वैसी काई की काई जम जाती। यही हालत हमारी है। सत्संग में थोड़ी होश आती है बार बार, फिर वहां से निकले फिर वैसे के वैसे। अगर हम काई को थोड़ा थोड़ा बाहर फेंकने लग जाए, जितनी जितनी काई उस तालाब में कम होती चली जाएगी, उतना पानी नजर आने लग जाएगा। जब सारी काई निकल जाएगी उसी पानी में, तुम अपनी शक्ल देख सकते हो। मेरा तजुर्बा कि जिनके ख्यालात नेक और पाक पवित्र अंतर और बाहर से बन गए, उनके अंतर अंतर्यामता अपने आप हो जाती है। झलक पड़ती है ना, हृदय साफ है उसमें झलक पड़ेगी। जितना कपड़ा साफ किया होगा उस पर जब रंग चढ़ाओगे फिर क्या खूबसूरत चढ़ेगी। ऐसे जितना हृदय निर्मल और साफ होगा, फिर आप नाम की कमाई करेंगे, नया से नया रंग चढ़ेगा। अगर गलाजत भरे कपड़े से को रंग में रंग दो तो उस पर रंग कितना भद्दा मालूम होगा। जो काम करना था वो हम नहीं कर रहे, इसलिए हालत नहीं बदल रही। उपदेशों की कमी नहीं, ग्रंथों पोथियों की कमी नहीं, प्रचारकों की कमी नहीं। कमी है तो इसी बात की, हम उसके आमिल नहीं रहे। बस सब क्या कि हृदय को तो शुद्ध नहीं किया। हृदय शुद्ध,
हृदय शुद्ध किया नहीं बारे, कहत सुनत दिन बीतारे।
सुबह से शाम तक लोगों को किस सुनाता रहा या सुनता रहा, इसी में दिन उम्र गुजर गई। ऐ बौरे इंसान, तेरी अकल ठिकाने है कहीं? बौरा किसको कहते हैं? जिसको होश ठिकाने ना। अरे भाई तू कर क्या रहा? जो करना था वो नहीं किया, लोगों को सुनता सुनाता रहा। काम क्या बने? ना दूसरे का बना ना अपना बना। हम लोग क्या करते हैं? प्रचार दूसरों को करते हैं, करने वाला अपने आप को छोड़ जाता। उसका नतीजा क्या है? जो भी प्रचार करते दूसरों को करता, अपने आप को नहीं करता, इसलिए तब्दीली होती नहीं। अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम प्रचार अपने आप से शुरू करें, हालत बदल जाए, जीवन पटका खा जाए। सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट इटसेल्फ। वही चीज बड़ी प्यार से जो शुरू होती है, ठीक ठीक के मालूम होती है, वही हमें ले मरती। तो अपने जीवन की पड़ताल पहला कर, तहारत कहो, पाकीजगी कहो, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पवित्र हैं वो मुबारक हैं कि केवल ऐसे ही लोग उस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। जिसका हृदय विलासों से भरा पड़ा वहां प्रभु क्या। और अरे भाई कुत्ता बैठता है माफ करना, वो भी दुम से जमीन को साफ करके बैठता। मामूली से अफसर ने आना हो वहां भी बड़ी सफाई करते। अरे भाई हम चाहते हैं वो शानशाह का शानशाह हमारे हृदय में प्रगट हो। कभी वो ऐसे हृदय में प्रगट होगा। शब्बीर तब्रेज साहब ने एक जगह कहा, देख भाई अगर तू मेरी शक्ल देखने का आशिक है तो और शक्लें देखनी छोड़ दे। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मेरे सवाल किसी और को मत दे। हमारे और उसके दरमियान कई और चीजें आ जाती, कहीं बुत आ गया, कहीं बच्चा आ गया, कहीं स्त्री आ गया, कहीं दोस्त आ गया, कहीं मित्र आ गया, फैलाव में चला गया, डिस्चार्जिंग हो गई और क्या। तो अमल की जरूरत है, अमल के बगैर मैन मेकिंग की जरूरत है। जब तक इंसान बनता नहीं, सदाचारी नेक पाक जीवन नहीं बनता, अगला कदम बनता नहीं, यही कमी है। अरे भाई न समाजों की कमी है, न धर्म पुस्तकों की कमी है, न प्रचारकों की कमी है। कमी है तो यही कि जिस चीज को कब वो प्रचार कर रहे हैं वो हमारे अमल में नहीं आ रहे। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन ऑफ थ्योरीज। आदि टांग का अमल कमाई हजारों मन कथनी से बेहतर। कबीर साहब ने फरमाया, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो बात सह। लिखना पढ़ना चतुराई करके जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना, धुआं धार तकरीरें देना, ग्रंथाकार बन जाना, ये बड़ी मामूली बात, ये आसान बात। क्या मुश्किल है? काम दहन मन बसी करण गगन चरण, यही बात मुश्किल। ये तीन बातें मुश्किल। चेष्टा को छोड़ दो, भव के रसों में लंपटाई को छोड़ हट जाओ, पहली बात ये मुश्किल। दूसरी, रूह का पिंड को छोड़कर गगन पर आना मुश्किल और मन का बस करना मुश्किल है। लेक्चर कथा ज्ञान ध्यान करना बड़ी आसान बात है, हर कोई कर सकता है और कर रहे हैं। जब तक अमल नहीं, काम क्या बनेगा? सवाल तो जो खुराक हजम नहीं होती, हजम होती है वही ताकत देगी। जो खुराक हजम ना हो आप खाते चले जाओ, नतीजा क्या हैजा होगा, या वही खुराक जो नहीं हजम हुई वो किसी और शक्ल में बीमारी पैदा करेगी। बस बात अच्छी। तो परमात्मा से लाव लगाने वाले लोग हमेशा के सुख को पा सकते हैं। जो दिसे तांसो मोह इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी। तो जो नजर आ रहा है दृष्टमान दुनिया है उससे हमारा मोह अटैचमेंट बन रही है। अरे भाई ऐसी हालत में है, हे परमात्मा तू तो अविनाशी है, तेरे से हम कैसे मिल सकेंगे? सवाल पे तो हृदय को शुद्ध करना ये पहला काम। देखिए बाल मंदिर जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं प्रभु की याद में, उनको हम कितनी झाड़ पूछ साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? धूप भी देते हैं, सफाई भी करते हैं, पानी से ये वो कोई गलाजत ना हो ये वो। अरे भाई बाहरी मंदिर जो उसकी याद के लिए बनाए गए उनकी तो सफाई के हम कितने लगे पड़े हैं। ये सच्चा हरि मंदिर है, ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्चे की ज्योत, जिसमें उसकी ज्योति जग रही है। ये वो मंदिर है जिसको कुदरत ने परमात्मा के हाथों ने बनाया है। उसकी सफाई हम क्या, बाहर तो सफाई कर रहे, अंदर में गलाजत भर रखी है, फिर बताए वहां क्या होगा। इसी में बैठो, इसमें बैठना सीखो, काम बन जाए। इसको गलाजत तो बैठोगे तो नजर आएंगे इसमें क्या क्या गलाजत है, फिर उसको निकालो। जैसे जैसे निकालते चलेगे शांति आती चलेगी। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज की, इंसान का बनना मुश्किल। इकबाल शायद थे, उन्होंने एक जगह कहा कि हजरत मूसा कोहेतूर पर गए किस लिए? खुदा के दर्शन पाने को, दीदार को। कहते हैं क्या उसको ये मालूम नहीं था کہ خدا ہمدرد تلاش آدمی است، خدا تو خود تلاش ہے کہیں آدمی کوئی ملے. جیسے میں نے ابھی یاد کی تھی، ہمارے حضور کو تلاش کرتے کرتے بابا جیول سنگھ منی کی پہاڑیوں میں پہنچ گئے. کیا پنجاب میں سب آدمی ختم ہو گئے تھے؟ تو انسان کے بننے کی ضرورت ہے. گیان و دھیان و رسم و رواج جس میں بھی تم ہو سماج میں مبارک ہو، مگر اس پہلو سے انگیلی سے تمہاری کلیان نہیں ہو رہی ہے. کسی سماج میں رہ کر جو کہتے ہو وہ کرنے والے بنے تب تو ٹھیک، مگر نہیں. یہی کارن ہے کہ دنیا میں الٹا دکھ بڑھ رہا ہے، باوجود اتنے پرچاروں کے. معاف کرنا، آج کل پرچار ہر ایک سماج میں کوئی کمی نہیں، پرچارک بڑے ہیں. پیڈ پرچارکوں نے تو اندھا دھند باتیں بنا رکھی ہیں، جو چاہے کہلا لو. ہر جگہ پرچار، ہر جگہ پرچار. میں وہ پرچار جس جن ہردوں سے آ رہا ہے وہ ملین ہے، دوسروں کو ملینتا بڑھا رہے ہیں، سکھ شانتی نہیں دے رہے. جتنا پرچار ہے معاف کرنا، دن دن نفرت بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ آج پچاس چالیس سال، پچاس سال پہلے جب کوئی ایک مہاتما آ جاتا تھا، کسی سماج کا تھا، سب سماجوں کے بھائی اکٹھے ہو جاتے تھے. اب بتاؤ آج کل کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سماجوں کے بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھ سکیں؟ ایک سماج کے ہی آدمی، اس خیال کے آدمی وہاں جائے، دوسری سماج کے وہاں پاؤں بھی نہیں ڈالتا. اس کا کارن کیا؟ ہمارے غلط پرچار کا نتیجہ. گرو ارجن صاحب نے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا بھاری ضیافت خانہ کا اور روحانیت کا قائم کر دیا. جب گرو ارجن صاحب کی بانی اکتر کی ہے تو کن کی کن کن کی اکٹھی کی ہے؟ وہاں سماجوں کا خیال نہیں رکھا، وہاں یہ رکھا کہ انوہی پرش کون ہے، آئیڈیل آدرش کی انسان کون ہے. ان کی بانی اکتر کر کے رکھ دی تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے. وہاں پر دیکھیے نام دیو چھیمبے کی بانی ہے، کبیر صاحب جلاہے کی بانی ہے، رمداس چمہار کی بانی ہے، ترلوچن برامن کی بانی ہے، سدنے کسائی کے بھی شلوک ہیں، سینے نائی کی بھی تھوڑا بہت ہے، خطری صاحبان کی بھی ہے. ارے بھائی خطری برامن یہ وہ ہم نے بنائے ہیں، پرماتما نے مورے لگا کر نہیں بھو جی کہ تم کون ہو. جس نے منوش جیون پا کر اپنی لو اس پربھو سے لگائی، اس میں چارج ہو کر جی اٹھا، وہی ہمارے پوجا کا استھان. ہر کی پوجا ستگر پوجو. پہاری کی پوجا کس کو کہی ہے؟ کہ ستگرو جو ست سوروپ ہستی ہے اسی کی پوجا ہری کی پوجا ہے، کیونکہ اس میں ست کا اظہار ہو رہا. اور ہر کی پوجا ستگر پوجے کر کرپا نام تراوائے، جس کو وہ مالک کرپا کرے وہ نام کے ساتھ لگ کر اس کی کلیان کر دے گا ستگر. پھر کیا کہتے ہیں؟ نرجیو پوجائے، غور سے سنیے، نرجیو پوجائے مڑے سرے میں تاکہ کھال برتھا سب جا. نرجیو کی پوجا کر رہے ہیں، مریو مسان پر بھاگے بھاگے اترتے. ایسے پرشوں کی محنت تو بگاڑ کی طرح ہے، مزدوری کوئی نہیں ملتی. گلوداسی صاحب نے ایسا کہا جیسے جو بھوس رہ جاتا ہے نا، کنک نکل جائے تو بھوسے کے کوٹنے سے کچھ نہیں نکلتا، ایسے ہی جو انجوں کے گھاٹ کے ساتھ میں مشغول ہیں، لگے پڑے ہیں، کہتے ہیں ان کی محنت تو بہت ہے مگر مزدوری کوئی نہیں. سمجھے؟ تو سنت مہاتما ہم کو جگاتے ہیں، ہم بھول میں جا رہے ہیں. گرو رامدس جی صاحب نے جو فرمایا نہیں، من میلے سب کچھ مالا، تن تھوتے من اچھا نہ ہوئے. اس جگت بھرم پلایا برلا بجے کو، جگت کے لوگ بھول رہے ہیں. کوئی کوئی انسان کی آنکھ کھلتی ہو کہتے ہو ارے بھائی بات تو کچھ اور ہی، کیا کر رہے تھے، کرنا کیا تھا؟ تو یہ جاگرت کہاں سے آتی ہے؟ کسی مہاپرش جاگتے پرش کی صحبت میں ان باتوں کی ہوش آتی ہے، نہیں تو نہ دھن دنیا لگی پڑی، مارو مار جا رہے ہیں. محنت بھی کی، ہر ایک طرح سے قربانی بھی کر کرا کے ملا کچھ نہیں. मनुष्य जी उन बड़े भागों से मिला था, बर्बाद चला गया। फिर पौड़ी छुड़की, फिर हाथ ना आवा, ऐला जन्म हुआ। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, ये जीवन तो बर्बाद चला गया। फिर याद नसीब, कब मनुष्य जीवन मिले, फिर ये इंसान काम कर सके। तो मनुष्य जीवन बड़े ऊंची ऐसी चीज है, जिसको जिस देवी को सिमरे देव, सो देवी पजहर की से, जिसको देवी और देवते भी सिमर रहे हैं। अरे भाई, देवी देवताओं को हुक्म दिया फरिश्तों को कि तुम इसको सजदा करो, उसकी हमने क्या अधोगति बना रखी। गौर से देखो, रोना आएगा। हम कर क्या रहे जी?
हृदय शुद्ध किया नहीं बौरे, कहत सुनत दिन बीतारे। आन देव की पूजा कीनी, गुर से रहा अमितारे।
कहते उस मालिक की पूजा करनी थी, उसको छोड़कर और की पूजाओं में लग गया। सबसे बड़ा देव परमात्म देवी है ना, परमात्म ने उन्हें आगे कई देव बनाए, माफ करना, देवी देवते बनाए खास खास काम के लिए। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, दुनिया सारी कर रहे हैं। ब्रह्मा पैदा करने का काम कर रहा, विष्णु भगवान पालने का काम कर रहा, शिव श्रृंगार का काम कर रहा, और देवी शक्ति को कहते हैं ये चार ताकतें हैं जो इस जगत में काम कर रही हैं। वो पिंड में भी हमारी सेवा कर रहे हैं और ब्रह्मांड में भी सेवा कर रहे हैं। पिंड में इंद्री चक्र पर पैदा करने का काम हो रहा, इंद्री चक्र, नाभि चक्र में विष्णु भगवान बैठे गदा को हजम करके सारे जिस्म को दे रहे हैं। प्राणों का भंडार शिव हृदय में है और कंठ में शक्ति है, ये हमारी सेवा कर रहे हैं। हम उस जिसने इनको बनाया उसको छोड़कर इनकी पूजा में लगे पड़े। अरे भाई माफ करना, अब मुक्ति तो परमात्मा के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं। अगर हमने मुक्ति पद को पाना है तो अवश्य परमात्मा के पास मुक्ति उसकी पूजा करनी हो, ईश्वर भक्ति होना पड़ेगा। बाकी देवी देवताओं के और ताकतों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, प्यार भी है, मगर एक चीज उनके पास नहीं है, मजबूर है हम। वे आन देव को छोड़कर पूजा तो उसकी करनी थी, एक परमात्मा को छोड़कर हम आन देवों में लगे पड़े हैं। कहते फिर अब उस परमात्मा की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, सवाल यह आता। उसको तो हम देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कैसे है? जब तक जितने ऊंचे वो, जिसकी पूजा हम करना चाहते हैं वो नजर में नहीं आया, देखा नहीं, उसकी पूजा कैसे हो? अब उसके देखने के लिए जितना वो ऊंचा अति सूक्ष्म रगम है, उतने ही जब तक हम खुद उतने ही सूक्ष्म रगम नहीं होंगे उसको नहीं देखेंगे, समझे? तब वो अति सूक्ष्म रगम है, उतने हम ही हो गए तभी उसको देख सकेंगे ना। देखिए हवा है, हवा में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है? है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है, हम उसको देख नहीं रहे। अगर हम खुर्दबीन का एक आला होता है, माइक्रोस्कोप, उसका ये खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता। अगर उसके जरिए से देखेंगे इसमें कीड़े मकौड़े भरे नजर आएंगे, जो अब भी हैं मगर हमें नजर नहीं आ रहा। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जितनी ये हवा है, या हवा के जरात इतने स्थूल बने जितनी हमारी आंख है, उस रेंज में आ जाए तब हम देख सकेंगे। प्रभु है तो परिपूर्ण। अब सवाल यह है, उसकी पूजा करनी है, उसको हमने देखा नहीं, फिर उसकी पूजा कैसे? अब जहां पर वो इजहार कर रहा, देखने वाली बात, उस इजहार करने वाली जगह पहले आएगी। गुरु प्रिसीड्स के आगे, गुरु एक ऐसी हस्ती है जिसके अंदर वो मालक इजहार कार कर रहा ताकत है। ताकत की किताबें हजारों तुम पढ़ लो, ताकत का कोई एहसास नहीं होता। हाँ, पहलवान ने उस ताकत को एकत्र किया, बढ़ाया है और उसको जब आप देखेंगे पहलवान को, उसकी शक्ल को, उसकी बातचीत को, उसके चलने फिरने को ताकत की थोड़ी झलक आने लगती है। ऐसे ही ऐसे पुरुष जिसके अंतरात में जो परमात्मा से जुड़े हैं उस पोल पर उस मालक का इजहार हो रहा। गुरु किसी उसको जरिए हमने उस तक पहुंचना, वो सूक्ष्म आंख उसकी कृपा से बननी है, वो आंख उसकी कृपा से खोलनी है जिससे वो मालिक नजर आता। नानक से अखियां बेअंजन सिंद्रो मापरे, ऐ नानक वो आंखें और हैं जिससे वो मालिक नजर आता, वो आंखें और हैं, ये चमड़े की आंख नहीं, वो शिव नेत्र है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, दिव्य चिक्षु है जिसके खोलने के लिए हम महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज हमारी आंख खोल दो। वो अंधों के अंतर भी है, परमात्मा की ऐसी आत्मा है, शेर का बच्चा शेर ही होता। महात्मा हमको आकर समझा रहे, भाई तू आत्मा है जिसमें नहीं, घबराता क्यों है, छोड़ इंदू का घात। अंधे से नाखियन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नाम का जे खसम कुथे जाओ। कितने अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं है, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर मालिक से टूट चुके हैं, वो आंख नहीं मिली जिससे वो नजर आते। अब इस आंख के लिए हम इन महापुरुषों के पास जाते हैं, जब हम जाते हैं वो हमारे अंतर की आंख को खोल देते हैं। जाने से पहले हम अंधे हैं, आंखें बंद करते हैं सुबह से शाम तक, हजारों साधन करते हैं, अंतर में ज्योति वो आंख नहीं खुलती जिसे वो ज्योति नजर आती है। जब वो बिठाता है ज्योति नजर आने लग जाती, आंख बख्शी जाती है, मिल जाती है। समस्त अग्रेज साहब ने इसीलिए कहा है, हमने हजारों मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी है, हजारों मादरदार अंधों को। जब अंधे को भी बिठाओ ना उसके अंदर भी प्रकाश आ जाता, आंख खुल जाती है ना, वो देखने लगता। तो हम इन महापुरुषों के पास जाते हैं ताकि वो आंख हमारी बन जाए जिससे वो नजर आ जाए। तो क्या
फरमाते
हैं, ये आन देव की पूजा में लगे पड़े। अब गुरु जो है ना उसके अंदर उसका इजहार हो रहा, अब वो इजहार भी किसको नजर आता, जो सब तरफ से हट हटा को उसकी तरफ देखेंगे, नहीं तो नहीं। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, हरगिज मगो कि काबा जो बुतखाना बेहतर है, ये कभी ना कहो भाई काबा बुतखाने से बेहतर है, काबा खलीलुल्लाह इब्राहिम साहब का बुतखाना था और ये हमने बनाए। कहते दोनों ही एक जैसे हैं, कौन सा हमारी नजर में अच्छा है। कहते हैं वही जहां जलवा है जाना नास्त बेहतर है, जहां उस परमात्मा का इजहार जलवे का इजहार है वही सबसे बेहतर है। और वो कहां है, वो किसी ऐसे पोल पर है जिस पर वो मालिक प्रकट हो रहा, वो मालिक सबके घट घट में है, समझे, सब घट मेरे साइया सुनी सही न कोय बलिहारी तिस घट के जहां घट प्रगट हो। हम उसके पास क्यों जाते हैं, कि उसके अंतर प्रगट है, उसके अंतर वो आंख बनी है जिससे वो नजर आता है। हम जाते हैं उसके पास कि महाराज हमारी आंख खोल दो, हम भी उसको देखने वाले हो जाए। बात तो इतनी रूप बढ़िया और खूबसूरती से बयान करते थे कि एक कमरा उसमें कई बैटरियां पड़ी है, एक बैटरी तो मैसेज रिसीव कर रही है कनेक्टेड है और बैटरी वैसी पड़ी है। अब वो दूसरी बैटरी है, उस जुड़ी हुई बैटरी के पास जाते हैं, कहते हैं भाई हमें भी कनेक्टेड कर, कनेक्ट कर दो, हम भी मैसेज रिसीव कर सके। बात तो यही, जो कनेक्टेड है वो क्या कहते हैं, जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में ला लो, जैसे उस मालिक की बाणी हो रही आ रही है वही मैं बयान कर रहा हूँ। मौत पीस ऑफ गार्ड बन गए, वो अपने मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, वो ताकत जो अंतर इजहार कर रही है वही बुला रही। नानक दास बुलाया बोले, हम उनके पास जाते हैं महाराज हमें भी जोड़ दो बात इतनी और क्या। तो कहते हैं आनदेव की पूजा कर रहे हैं, उस परमात्मा को पाने का हमारा आदर्श है, उसको हम देख नहीं सकते। तो पहला इजहार गुरु प्रसीड्स गार्ड, उसके अंतर वो इजहार कर रहा है, उसकी पूजा हरि की पूजा, ये पहला कर रहा है। ये सब महात्मा कह रहे हैं, मौलाना रूप साहब फरमाते हैं, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, जब तुमने मुर्शिद की जात को कबूल कर लिया, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल, उसकी जात में खुदा की पूजा भी आ गई, रसूल की भी आ गई, सब कुछ उसके अंतर आ गया। तो जिस महापुरुष जिसके अंतर इजहार हो रहा है उससे आपको कांटेक्ट हो, वो आपको वो आंख दे देता है जिससे आप सच्चे माने उन सब महापुरुषों की जो पीछे आज तक आए हैं सबकी कदर करने वाले हम हो जाते हैं, उनकी ग्रेटनेस को जानने वाले हो जाते हैं। तो ये सब ग्रेटनेस तो पहले भी मौजूद थी, मगर उस महापुरुष के मिलने के बगैर हमें ये चीजें हैं तो सही मन नजर आने आती नहीं बात है। सो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि हम और आम देवों की पूजा में लगे पड़े हैं, हमने परमात्मा को पाना था, जिसके अंतर परमात्मा के इजहार हो रहा है, पोलराइज गार्ड है, उसकी सेवा में नहीं लग रहा, हकीकत को नहीं पा रहे हैं, जन्म बर्बाद जा रहा है। देख
आनंद देव की पूजा किनी गुरु से रहा अमितारे, तन जो बन तेरा यहीं रहेगा, अंत समय तन रितारे।
कहते हैं भाई दुनिया धन और जोबन में लगी पड़ी है, मनी मेकिंग जायदादों के इकट्ठे करने में, रुपए के इकट्ठे करने में लगी पड़ी है, या जोबन जवानी जवान होने की हिरस उसमें बस रही है, हजारों किस्म के टॉयलेट बरसता, हजारों किस्म की दवाइयां खाता, ये रंग रूप बना रहे। अरे भाई ये रंग भी फानी है, वो रंग भी फानी है, सब ले जाना, ना ये रहेगा ना वो रहेगा, दुनिया के सामान साथ कैसे जाते हैं। ये जिस पैदा होते हुए पहला संगी और साथी है जो हमारे साथ आता, अरे भाई वो जाते ही हमारे साथ नहीं जाता, बताओ वो सामान जो इस जिस्म करके बने हैं वो कैसे साथ जाए, सवाल गौर की सोचने की बात। जो छदना सो अस्थिर कर माना, जो होवन सो दूर पराना, जो छोड़ जाना है उसको स्थिर समझ रहा है, जो रहने वाली है उसको परे परे कर रहा है, छोड़ जाए तिसका सम कर रहा है, संग सहाय तिस पर हरे, जो छोड़ जानी है उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, और जो इसकी आत्मा की हमेशा संगी और साथी है उसको परे परे कर रहा है। बताओ हमें कौन अकलमंद कहे। गुरु अर्जुन साहब ने बड़े जोरदार लफ्जों में फरमाया, प्राणी तू आया अल्लाह लैन, ऐ प्राणी तू दुनिया में आया था इससे फायदा उठाने के लिए, परमार्थ हासिल करने के लिए, ऐसा अर्थ और फायदा जो सबसे बढ़कर हो, हमेशा रहने वाला हो, लास्टिंग हो, मगर तू किन कामों में लग गया, लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली रहे, तू किन फजूल कामों में लग गया, होश कर जल्दी कर। फिर कहा यहां तक, जो कर छड गुआवना तिस लगा मनमा है, जो घर एक दफा छोड़ देना, ये जिस्म और इसके बाहरी घर मकानात, ये तो इसका दीन ईमान लगा पड़ा, और जहां पर इसे जाना उसका कोई चित चेत फिक्र तक भी नहीं, ख्याल तक भी नहीं। कहते अरे भाई तुम कौन हो सकते हो, गौर से सोचिए, या तो कोई अनजान बच्चा हो सकता है जिस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, तो या मूढ़ से मूढ़ हो सकता देखता है अपनी आंखों से, ऐसे जिस्म उसने अपने कंधों पर उठाकर शमशान भूमि में पहुंचाए हैं, अपने हाथों से दाग भी दिए और फिर भी उसके दिल दिमाग में ये समाई है, ये हमेशा रहेगा। बताओ, या तो वो मूढ़ है या अनजान है, दोनों में एक जरूर है, और क्या कहो। महात्मा हम पर रहम कर खाते हैं, उनकी जाति गर्ज इसमें नहीं, वो यही चाहते हैं कि दुनिया भूल में जा रही है, अपना जन्म बर्बाद कर रही है, घर बार को छोड़ को बाहर उनके उलहार के लिए निकलती है। आपको पता है गुरु नानक साहब जब घर से निकले तो क्या हशर हुआ था, घर से निकले सास थी इनकी मूलो जी, उन्होंने दो लड़के थे इनके सामने खड़े कर दिए, कहने लगे ऐ नानक अगर तूने यही काला करना था तो इन बच्चों को क्यों पैदा किया था। ये तो खैर उर्दू में बड़ी ताजी वाली बात है, पंजाबी में लफ्ज आते हैं जे तू यही काला करना चाहिए तो बच्चे क्यों जमता रहे। दुनिया की जबान बड़ी सख्त है, तो वो क्या कहते हैं, माता जिन बंधनों में तू मुझे फंसाना चाहती है, मैं दुनिया को इन जकड़ों से आघात करने आया, दुनिया जल रही है, मैं उनको इससे बचाने के लिए आया। घर से निकले कौन आदमी, घर से एक दिन निकलकर देखो तो सही, अपनी आराम की उम्र को छोड़कर, माफ करना, लोगों की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर देनी, घर बार को छुट्टी कर देनी, कहने की आसान बात है, करके जरा देखो तो सही, 10 दिन भी घर से बाहर रहना मुश्किल। तो ऐसे महापुरुष पर वो लोग जिनकी आंखें बंद हैं उन्होंने क्या कहा, ये कुराया है। कसूर के शहर में इतिहास बतलाता है उनको दाखिल होने नहीं दिया कि लोगों की अकले बिगाड़ता, दुनिया का खाता है, मर उनको हमारे हाल जार पर रहम आता है हमें छुड़ाने के लिए, कहता अरे भाई तुम्हारे ये न जोबन रहेंगे न ये हालात रहेंगे, और पाकिस्तान की मेहरबानी ने हमें दूसरे तो सामने दिखला दिए, मरते तो सब कोई छोटे जीते जी छुड़ा कर बतला दिए। मेरे पास एक बार एक आदमी आया, यही कहता था भाई हम कई बार ये प्रार्थना करते थे कि हे मालिक हमसे ये दुनिया छूटती नहीं, घर बार रुपया पैसा ज्यादा दे की झंझट है, हम छोड़ नहीं सकते, आप ही दया करके छुड़ा लो। जब उसने दया की छुड़ाई रोने लग गए, और क्या था सो मतलब क्या भाई, आखिर एक दिन छोड़ना, अकलमंदी की बात ये छोड़ना, 10 दिन के बाद, 10 वर्ष के बाद, 100 साल के बाद, चलो हजारों वर्षों के बाद, जिसको छोड़ना है अरे भाई आज ही इसको दिल से छोड़ने लग जाओ। ये गुजारे मातर बरतो इनमा ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इनको गुजारे के लिए बरतो। हम दुखी क्यों हैं, सेंट ऑगस्टिन कहता कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी उनको हम भोग रहे हैं, और जो जिस चीज का हमने भोग लेना था उसका कभी जिक्र ही पर छोड़ते हैं। बस क्या मतलब, ये जिस्म बाहरी तलकात रुपया पैसा जायदादें ये हमको बरतने के लिए मिली थी, हम इनको भोग रहे हैं, इनका रूप बने बैठे हैं, लंपट है, इनको छोड़ना नहीं चाहते, इनसे काम लेना था और आत्मा में भोग लेना था परमात्मा का, उसका कभी ग्रंथ पोथी में जिक्र पर छोड़ा, और वो भी इसलिए कि यही दुनिया हमको मिले, बात तो यही दुनिया की खातिर ही हम उसको याद कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो सच में उस प्रभु को प्रभु की खातिर याद कर रहे हैं, देखने वाली बात यही है, बड़ी छोटी सी बात। हमने एक दिन जिस्म को छोड़ना है, अवश्य छोड़ना है, जरूर छोड़ना है, नो एक्सेप्शन टू द रूल। जब उस मालिक की दरगाह से परवाना फटेगा कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके, अरे भाई जिस्म को तो छोड़ना ही है, वो छोड़ने वाला कौन है, ये तो जिस्म यहीं धरा रह जाएगा, ये जो हम लिए बैठे वो कौन है जो इसको छोड़ता, उसको जानो होश आ जाएगा। यही उपदेश सब उपनिषदों ने दिया,
अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काय। जब तक इंसान अपने आप को नहीं चीनता है ये भ्रम मिट नहीं सकता। यार
तन जो बन तेरा यही रहेगा, अंत समय चले रितारे।
हाँ खाली जाना होगा हमको, अंत में होश आती है पहले नहीं। कहे कबीर तई नर जागा, जो यम का दंड मूंड में लगा है। जब अंत समाया रूप इनको छोड़ने लगी, होश आई, रोता है, हरे भाई मैंने क्या किया, अफसोस करता है। पर अब पछताया क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, उस वक्त पछताना किसका होगा। अरे भाई हमारे सामने ये सवाल बड़ा अहम जरूरी है जो सामने है, मगर हमने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। हजार ग्रंथ पोथी ऊपर डालते हैं, सत्संग भी सुन डालते हैं, ये बात एट होम होती नहीं कि बात क्या। हमारी बुद्धि तो समितियां हैं, दिल ही मान रहा, इतना रंगा पड़ा है दुनिया में इसको एक नहीं सुनी। जा तो ये खाली हाथ जाता, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। महमूद के मुतल्लिक जिक्र आता है, उसने हिंदुस्तान पर कई वो 30-32 के करीब हमले किए थे, जिसमें से 17 ज्यादा मशहूर है। कहते जाओ उसे बड़ा रुपया यहां हिंदुस्तान से ले गया, कई बेवाओं स्त्रियों को ले गया, कई गुलामों को ले गया। जब अंत समय आया तो कहने लगा, जो कुछ मैंने माल एकत्र किया है जरा इसको ढेर लगा दो, मैं जरा देख लू इन आंखों से कि मैंने क्या कुछ एकत्र किया। पालकी में जा रहे थे, ढेरों को देखे, कहीं हीरे के जवाहरातों के ढेर, कहीं किसी सोने के, कहीं कुछ, रोता जाता था। एक वजीर था, कहने बादशाह सलामत तुम क्यों रोते, ये चीज किसके साथ गई, किसके साथ जा सकती। उन्होंने तो अपनी तरफ से बड़ा ज्ञान की बात की ना। तो महमूद ने कहा, अच्छा भाई ये बात मैं जब घर महल में वापस पहुंचे मुझे याद कराना। उसने उस वजीर ने ये समझा कि कुछ इनाम मिलेगा। जब वापस आए तो याद बात कराई, अच्छा भाई इसको कैद कर दो उम्र भर के लिए कैद कर दो। महाराज मेरा कसूर, कहते तेरा कसूर यही है कि जिस वक्त मैं बच्चों को यतीम बना रहा था, स्त्रियों को बेवा बना रहा था, लोगों का खून बहा रहा था, अरे भाई ये बात मुझे उस वक्त कहनी थी, यही सजा है कि तूने अब याद दिलाई। अरे भाई संत महात्मा तो गला फाड़ फाड़ कर कहते, अरे भाई तुम्हारा कोई नहीं, अगर आप भी ना सुनो तो हरे की अपनी मर्जी रहे। जाना राजा राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। न ये जोबन रहा न ये जवानी रही, न रहती है न रह सकती है। एक बूढ़ा आदमी था, वो कुछ तलाश कर रहा था, पूछे अरे भाई क्या तलाश है, कहते जवानी तलाश कर रहा। अरे भाई जवानी कहाँ आएगी, एक बार हाथ से गुजर गई, गई रुपया पैसा भी भाई किसका है, इसमें वही चीज तुम्हारी है जिसको तुमने बरत लिया नेक रस्ते से, बाकी सब तुम्हारे बंधन का कारण है और कुछ नहीं। तो कहते हैं खाली हाथ जाना होगा भाई, न जोबन रहेगी ये जवानी रहेगी, न ये रंग रहेगा न रूप रहेगा, न जायदादें रहेंगी, न ये रहेगा न वो रहेगा, आखिर जब अंत समय आएगा तो ये छोड़ना पड़ेगा। यही तुलसी साहब ने, सब महात्माओं ने आपको अपनी जगह इसी का जिक्र किया है। एक जगह बयान करते हैं कि सारी दुनिया की लक्ष्मी एकत्र कर लो, सारी दुनिया की, जहां से सूर्य चढ़ता है जहां जाकर उतरता है ना, वो सारी जमीन जिस पर वो सूर्य चढ़ता और उतरता है वो तुम्हारी जायदाद बन जाए। तो आखिर क्या कहते हैं, आखिर जो निज मर्म है तो कम आवे काम। अरे भाई आखिर तुमने छोड़ जाना है, बताओ यही एकत्र करते रहे, लगा कित को फकड़े तब मुक्ति चले जा। इसका ये मतलब ना समझो कि हमने दुनिया के काम नहीं करना। तुम जिस्म रखते हो, जिस्म को पालो, इसके तालकात के जो देना लेना खुशी से दो, अपनी किर्त की कमाई करो, बांट कर खाओ। बैरे तात लुकम बायर हला, भक्ति भाव के लिए हलाल की रोजी चाहिए, ये पहला काम। तुम बुद्धि रखो, बुद्धि के भी पहलवान बनो।
और आत्मा भी तो रखते हो भाई, तुम आत्मा हो, जिस्म नहीं, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं। अरे भाई उसके मुतल्लिक भी कुछ जान लो, तभी तुम पूर्ण इंसान बन सकोगे, नहीं तो एम्पुटेटेड मैन बनो और क्या, दुखी रहोगे। नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान ही दुखिया है नानक। कोई सुखी दुनिया में है? कहते हाँ, सो सुखिया जिस नाम आ रहा, नाम भजा वो जग में जीता रहे, वही जी सकता है। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहाल, नानक से मुख उजले केती छुटी नाम। उनके अपने मुख उजले हो गए, जन्म सफल हो गया और उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। जी
बावर आने बावर डारी, हंद जाल सब की तारे।
कहते हैं उस बावरिया ने दुनिया को जो बावरा बना रहा है, कौन? नेगेटिव बावर, बुला रहा, भूल में डाल रहा है बावर जो है। कहते हैं सारे दुनिया को जाल में फंसा रखा, सब भूल में जा रहा है। बावरिया ने
बावर डारी, हंद जाल सब की तारे।
सबको जाल में फंसा रखा है, किसी इंद्र जाल में, इंद्रियों के जाल में, इनके भोगों रसों में लंपट कर रहा। देखिए आसमान पर आजाद उड़ने वाला परिंदा कैसे पकड़ा जाता, शिकारी दाना डालकर ऊपर जाल बिछा देता, दाने की हवस में आता, सारी उम्र की गुलामी सर ले लेता, पिंजरे में पड़ जाता। ऐसे ही दरिया में मछली है, आजाद फिरने वाली है, खाने के हवस में शिकारी कैसे पकड़ते हैं, जाल में कुंडिये लगाते हैं, उसमें आटा या कुछ और लगा देते हैं, हड़प करती है, गले में कुंडी फंसती है, तड़प तड़प कर मरता। सारी दुनिया इसके जाल में फंस रही है। शमस तबरेज साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, आवारगी निवस्त शुदा, खाना फरामोश शुदा, आ गंदा पीरे काबली, बस सैर कर ददा दरा। हमारी किस्मत में दरबदरी लिखी गई, जन्मों में आना जाना भटकना लिखा गया, जो असल घर था वो भूल गया, यही दुनिया सब कुछ बन गई। कि उस काबल के गंदे पीर ने हमें ऐसा जादू का असर किया, गंदा पीरे काबली, बस सैर कर दगा दगे, धोखे से हमको जादू में फंसा दिया, बस यही यही दुनिया नजर आती है और कुछ नहीं। सब महात्मा आपको अपने तरीके से बयान करते, बात वही कह रहे हैं। अरे भाई दुनिया फैलाव में जा रही, यही नेगेटिव पावर, ये पिरे मार्ग है भाई जिसमें सब दुनिया फंस रही, इससे हटना पड़े। शर्म मार्ग अख्तियार करो जो पहले तंग और तार है। तुलसी जग जाने नहीं, अति यो तंग पिया पंथ, उस मालिक के पाने का रास्ता बड़ा तंग और तार है। मेरे मार्ग बड़ा फैलाव का, बड़ा प्यारा मालूम होता, मैं निकलने को कोई रास्ता नहीं, और शर्म मार्ग तंग और तो बहुमत पीछे शुरू होता, अंधेरा, अंधेरे के पार हो जाओ, इस पर्दा से आके जरा पार देखना, वो बढ़ते ही चला जाता। तो आखिर दुनिया सब एक माया के जाल, माया और काल के जाल में फंस रहे, दगे में फंस रही, उसको अपने आप की सूझती नहीं कि मैं कहां की बासी हूं, मैं कौन हूं। महात्मा जन जब आते हैं वो कहते हैं अरे भाई देख तू भी मेरी हमशक्ल है। कहते हैं एक बार एक शेर का बच्चा किसी गडरिये ने भेड़ों के साथ पाल दिया। अब संगत का असर होता है, वो शेर भी समझे मैं भेड़ हूं, समझे। एक शेर ने देखा भाई शेर का बच्चा है ये, भेड़ों के साथ चल रहा है। जब शेर आया तो सब भाग गए। वो शेर के बच्चे देख भाई तू और मैं एक ही जैसे हैं, पानी के किनारे देख भाई।